एक सांस में रेखा सीढ़ियां उतर आई थी। उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। बहुत खुश थी वो आज, और क्यों ना हो, आज अमित के अच्छे होने की खबर जो आई थी, जाहिर सी बात है, भला उसके पांव जमीन पे कैसे पड़ते, अपने आसमां से जो मिलने जा रही थी। कभी कभी कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, पर उनका वजूद रहता है इन वादियों में। रेखा और अमित का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था, जैसे आसमां था अमित और जमीन थी रेखा। अमित से वो पहली बार दो अनजाने फिल्म के सेट पर मिली थी। अमिताभ, जिसने जंजीर फिल्म से लोगों के दिल में जगह बना ली थी, और एक साधारण सी लड़की रेखा फिल्मों में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। रेखा, उसका बचपन उलझनों से भरा था। यूं तो बेटियां पिता की लाडली होती है, पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखती है, और पिता की उंगली पकड़कर मैके की ऊंची दहलीज पार करना। पर रेखा के पास न पिता की वो उंगली थी, ना ही पिता का नाम। होती भी कैसे, पिता ने कभी नन्ही रेखा को अपनाया ही नहीं था। पिता के नाम और प्यार से महरूम रेखा जिंदगी से समझौता करना सीख गई थी, उन उंगलियों के बिना भी चलना सीख गई थी। कुछ 13-14 साल की थी वो, जब घर की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उसने फिल्मों में कदम रखा था। वो सांवली सी लड़की फिल्मों में अपना पहचान बनाने नहीं, बल्कि अपनी मजबूरी से आई थी। न जाने जख्मों की कितनी परतें उसकी जिंदगी पर थी, और न जाने कितने उसके दिल पर। काका, लीलावती हॉस्पिटल चलिए। नहीं नहीं, पहले मंदिर, रेखा ने अपने ड्राइवर से कहा था। शहर में आज भी उतनी ही भीड़ थी जितनी हर रोज रहती थी, पर जाने क्यों रेखा को ये भीड़ हर दिन से ज्यादा लग रही थी। कभी वो अपनी साड़ी की पल्लू को ठीक करती, कभी माथे की बिंदिया, और कभी उन फूलों के गुलदस्ते पर अपना हाथ फेरती जो वो अमित के लिए ले जा रही थी। फिर सब्र का हाथ थाम कर बेचैन होती।
ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन सितारे।
रेखा की बेरंग जिंदगी में भी अमित इन फूलों की महक की तरह ही खुशबू बनकर आया था। रेखा अपने वो पुराने दिन याद करने लगी थी, जब सेट पर उसके साथ हुई बदतमीजियों के लिए सेट पर मौजूद एक आर्टिस्ट को अमित ने खरी खोटी सुना दी थी। कैसे उन्होंने पल पल रेखा का साथ दिया था, उसे फिल्मों के तौर तरीके सिखाए थे, कैसे अमित ने एक साधारण सी लड़की को बहुत खास लड़की बना दिया था। अमित ही तो था जिसने पहली बार रेखा को खुद रेखा से मिलवाया था।
ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं।
अमित की उंगली थामे पहली बार खुद से मिल रही थी रेखा। अपने नाम के साथ जुड़ा पिता का नाम ही तो चाहा था उसने, पर आज उसे किसी नाम की जरूरत नहीं थी, वो खुद में एक पहचान थी। जिस जगह को उसने अमित की उंगली पकड़कर पाया था, उस उंगली पर अपना मन बांधाई थी, अपने दिल का आंगन बनाकर अमित का प्यार बांधाई थी। खामोशियों की भी जरूर अपनी जुबां होती होगी, वरना मन कैसे सुन लेता है दिल की बातें। बेगानों की इस दुनिया में कब दिल किसी बेगानी का हो जाता है, ये समझते समझते इतनी देर हो जाती है कि वो बेगाना ही पूरी दुनिया बन जाता है। अमित की खामोशी ने भी कहा था कुछ, और बेगानों की इस दुनिया में रेखा की पूरी दुनिया अमित में सिमट कर रह गई थी। मंदिर आ गया था। रेखा ने मंदिर में कदम रखा था। विशाल गणेश की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर उसने कहा था, प्रभु तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली, मेरी अमित को तुमने मुझे लौटा दिया। तभी पंडित ने रेखा के माथे पर सिंदूर का टीका कर दिया था। मंदिर की सीढ़ियां उतरने लगी थी वो। अपने माथे पर लगे टीका पर हाथ फेरा था उसने। कितना अर्थ बदल जाता है बस जगह बदलने से, सोचने लगी थी रेखा। यही सिंदूर उस दिन जब मेरी मांग में पड़ा था और मैं ऋषि और नीतू की शादी में पहुंची थी, तो कितनी हैरानी भरी नजरों से लोगों ने घूरा था मुझे। पूरी महफिल में बस मेरा ही चर्चा था। हर किसी की जुबां पर बस एक ही बातें थी। रेखा को लोगों की फुसफुसाहट आज भी सुनाई दे रही थी। किसी ने मुझसे पूछने की हिम्मत नहीं की और अखबार में छाप भी दिया कि मैंने और अमित ने शादी कर ली है। पर उस भीड़ में मैंने जया दी को देखा था और जया दी की आंखों में उस डर को। कार तक पहुंच गई थी रेखा, कार चलने लगी थी। रेखा को याद आया था वो दिन जब अमित और रेखा की एक रोमांटिक सीन को देखकर जया की आंखों में आंसू भर आए थे। रेखा ने उन यादों से अपने को निकाल कर खुद से कहा था, हाँ वो डर एक पत्नी का ही होगा। अपने पति को किसी और का होते देखना अपने वजूद को खोने जैसा ही होगा। मैंने भी तो फैसला किया था ना कि अपनी वजह से जयादी को कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। बस दिल से मजबूर हूँ मैं। न जाने कितनी दलीलों के साथ रेखा खुद को समझा रही थी। सहानुभूति जैसा ही कुछ था जो खुद के लिए वो समेट रही थी। हॉस्पिटल आ गया था। ढेर सारी हिम्मत बटोर कर वो उतरी थी कार से। हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए, आंखों में मिलने की ख्वाहिश, दिल पे बेगुनाही की चिट्ठी और पैरों पे पड़ी बंदिशों का बोझ उठाए वो पहुंची थी अमित के रूम तक। दरवाजे पे एक कदम रखा था उसने। जया अमित को बाहों का सहारा देकर तकिए पे सुलाने की कोशिश कर रही थी। वो दरवाजे तक ही रुकी रही। जया उसे अनदेखा करने की कोशिश कर रही थी। कभी तकिए पे पड़ी सिलवटों को, कभी चादर पर पड़ी सिलवटों को संवारती रही थी जया, जैसे कोई आहट नहीं हुई थी रेखा के आने की। एक पल को सोचा रेखा ने कि जो फूल वो ले आई है उसे बढ़कर मेज पे सजा दूं। जो पांव अब तक जमीन पे नहीं पड़ रहे थे उसे उठाने में अब इतनी जद्दोजहद क्यों करनी पड़ रही थी। तभी उसकी नजर सामने कांच की डोर पर पड़ी थी। अमिताभ और जया की धुंधली सी झलक उसमें नजर आ रही थी। अमित के सिरहाने बैठी जया उसके धुंधली सी थी वो झलक। अपनी मौजूदगी उस कांच पर न पाकर रेखा बेचैन हुई थी। उसने कमरे की हर कांच को देखा, कमरे में लगे हर आईने को देखा था, वही दरवाजे के बाहर खड़ी, पर किसी कांच पर उसकी प्रतिबिंब नहीं थी। एक पल को लगा शायद कोई धूल पड़ गई हो इस कांच पर, उस आईने पर। फिर चाहा था उसने अपने आंसुओं से उस कांच को धो लेना ताकि खुद को देख सकूं। उसने हाथों में भरा था अपने आंसुओं को, पर उसके साफ करने से पहले ही उसे सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा था। देख पा रही थी वो अमित और जया को उन आंखों से जो अब आंसुओं से खाली था, पर किसी कांच पर नहीं, हकीकत में सामने। हकीकत के एक सिरे पर अमित और जया थे और दूसरे सिरे पर रेखा अकेली खड़ी थी। सचमुच उसके आने की आहट नहीं हुई थी। अपनी गैर मौजूदगी का बोझ उठाए लौटने लगी थी वो। ऊंची थी उस दरवाजे की दहलीज जिसे उंगली पकड़कर पार कराने के लिए कोई नहीं था। तन्हाइयों का शोर इतना था कि अपनी सिसकियां भी सुन नहीं पा रही थी रेखा। दूर तक फैली थी बस तन्हाई।
दूर तक फैली है तन्हाई, जो गुजरे हम पे वो कम है।
काका वापस मंदिर चलिए, रेखा ने कहा था ड्राइवर से। आज भी उसे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। सोच रही थी वो, क्यों प्यार को एक नाम की जरूरत होती है। गिला तब भी नहीं था जब पिता ने उंगली पकड़कर चलना नहीं सिखाया। गिला तब भी नहीं था जब पिता की जिंदगी में उसकी मौजूदगी नहीं थी, फिर आज अपनी गैर मौजूदगी का गिला कैसा, और गिला भी उससे कैसा जो वजूद थरेखा का, आसमां थरेखा का। मंदिर आ गया था, हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए मंदिर की तरफ बढ़ी थी वो। भगवान के चरणों में फूल रखते हुए कहा था उसने, मैंने जो मांगा तुमने दिया, पर जिसके लिए मांगा उसे ये फूल न दे सकी, तो सोचा ये फूल तुम्हें ही लौटा दूं। जब शिकायत तकदीर से नहीं तो तुमसे कैसी प्रभु, इस दिल में तुमने बेशुमार प्यार दिया, अब दर्द के लिए कोई जगह ही नहीं बची, तो इस दर्द को तुम ही रख लो प्रभु। बड़े बोझिल मन से रेखा घर जाने को उठी थी, अपना दर्द ईश्वर को लौटाते हुए। उसने सोचा था वो वक्त भी लौटा दूं, जिसे वो अपनी जिंदगी का कीमती पल मान बैठी थी। चाहा था उसने आगे बढ़ जाना इस पल से, इस लम्हे से, इस नाराजगी से, इस मोहब्बत से। घर लौट आई थी रेखा, सीढ़ियां चढ़ती सोच रही थी, कितना लंबा था ये सफर, 7 साल लंबा, कितनी दूर निकल आए थे हम साथ चलते चलते, जाने वो कौन सा मोड़ था जहाँ बेखौफ मैं खड़ी रही, पर वक्त मुड़ गया। क्यों ये दिल अचानक से बेगाना लगने लगा, क्यों कल तक जो हम सफर था वो अब प्यार की स्याही का रंग कैसा होगा पता नहीं, पर शायद जरूर प्यार की किताब का रंग सफेद होगा, जिस पर हर चाहने वाले ने अपनी रंग की स्याही भरी। रंग तो सारे खूबसूरत थे, बस कुछ रंग कच्चे रह गए। अमिताभ घर लौट आए थे, और जया की जिंदगी में भी दिल के किसी अंधेरे कोने में यादों के सारे पलों को समेट कर रख दिया था रेखा ने। जिंदगी अब उन लम्हों से आगे बढ़ गई थी। 7 साल और गुजर गए थे, एक शो में पहुंची थी रेखा, जो लम्हा पीछे रह गया था वो आज फिर सवाल बनकर सामने खड़ा था। बीते लम्हों को याद करना इतना मुश्किल नहीं होता होगा जितना बीते लम्हों से खुद को निकाल लेना। रेखा उन लम्हों में कैद जरूर थी, पर आज उसका खुद को देखने का नजरिया बदल गया था। लोगों को आज भी जानना था कि रेखा और अमित का रिश्ता क्या था। कुछ सवाल खुद में एक रहस्य होती है, जिसका जवाब हम अपने दिल को भी नहीं देना चाहते तो भला दुनिया को क्यों दें, और अगर हम जवाब दे भी दें तो क्या फर्क पड़ता है, दुनिया अपना जवाब तो अपने तौर से ही समझेगी। पर बड़ी ही खूबसूरती से रेखा ने अपने और अमित के रिश्ते पे कहा था, ये पूरी दुनिया अमित को जितना प्यार करती है, बस मैं पूरी दुनिया से थोड़ा ज्यादा उन्हें प्यार करती हूँ। कुछ राज को एक सवाल ही रहने दिया जाए तो अच्छा, कौन जाने उस जवाब में छुपा किसी का कितना दर्द होगा। दिल के किसी अंधेरे कोने में एक हल्की सी रोशनी पड़ी थी, और यादें नजर आने लगी थी। उन यादों को बड़ी अदा से रेखा ने गुनगुनाया था।
तू बदन है, मैं हूँ छाया, तू ना हो तो मैं कहाँ हूँ।
सचमुच आज वो बिना किसी उंगली के जिंदगी को सवारना सीख गई थी। कार के पीछे सीट पर सर टिकाए रेखा बैठी थी, आंखों में तैरते आंसुओं में कुछ सपने बह रहे थे और कुछ डूब रहे थे। सोच रही थी वो, क्यों प्यार के लिए दो इंसानों की जरूरत होती है, किसी को चाहने के लिए एक दिल का होना क्यों काफी नहीं होता। यकीनन किसी को चाहने के लिए दिल में चाहत का होना काफी होता है, और उस चाहत में खुद का होना काफी होता है। इस मोहब्बत में भी रेखा का खुद होना काफी था। कैद थी रेखा अपने ही दिल में, और अपने ही दिल के कैद से भला कोई कैसे रिहा हो, जमीन से भी भला आसमां कैसे जुदा हो।
तू बदन है, मैं हूँ छाया, तू ना हो तो मैं कहाँ हूँ।
कार से उतरी थी वो, तभी बारिश की दो बूंद उस पर टपकी थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया था बारिश की तरफ और सर उठाकर देखा था आसमां को। बारिश की एक चिट्ठी आई थी आसमां से।
कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत।
मुस्कुराई थी रेखा और उसके दिल में गूंज रही थी एक आवाज।
किसी रात